नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर दौरे का कार्यक्रम। देश भर के 100 से ज्यादा आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर दोबारा विचार करने को कहा। माउंट आबू में कल से ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत। 3 दिन के आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई रोचक प्रतियोगिताएं होंगी। और प्रदेश में मई महीने में भी मौसम का मिला जुला मिजाज, कई जगह आंधी बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर दौरे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री देशनोक से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए 100 से अधिक आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इस दौरान श्री मोदी आम जन को भी संबोधित करेंगे। समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नाल हवाई अड्डे पर जवानों से संवाद करेंगे और उनका देशनोक करणी माता मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आज जयपुर में बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के समय में पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का मतलब आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है और ये देश की सैन्य शक्ति को दर्शाता है।
समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे। पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वो आपने करके दिखाया। ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के जवानों के सम्मान में प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। कोटा के रामपुरा में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसमें भाग लिया। उधर किशनगढ़ स्थित राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में तिरंगा रैली निकाली गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव ने कहा कि रैली में विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय कार्मिकों के साथ साथ ही आसपास के गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आकाशवाणी से भी इसी सिलसिले में विशेष कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं। एक कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल अनिल माथुर ने युवाओं से ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरणा लेते हुए देश सेवा को सर्वोपरि रखने की अपील की।
मुझे बहुत खुशी है कि हमारा जो युवा है वो बहुत प्रगतिशील है, वो आगे बढ़ने की सोच रहा है। जब वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, जैसे ये ऑप सिंदूर में हुआ था, आतंकवादी चाहते थे कि देश में मनमुटाव हो धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, मगर हमारा युवा इन सब चीजों से जागरूक है और मैं ये चाहता हूँ कि वो कभी इन छोटी छोटी बातों पे ना जाए, धर्म की, जाति की, और पूरे देश को सर्वोपरि मान के देश सेवा में, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, न केवल सेना के, मगर किसी भी प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में, कहीं भी काम करे, वो देश हित को सर्वोपरि रखे।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए राज्य में विभिन्न रेलवे स्टेशनों को भी तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। डूंगरपुर में देव सोमनाथ मंदिर पर विशेष सजावट की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में संस्कृत के विद्वान स्वामी राम भद्राचार्य को वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। स्वामी राम भद्राचार्य और प्रसिद्ध उर्दू कवि तथा गीतकार गुलजार को 2023 के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने दोनों साहित्यकारों को बधाई दी। स्वामी राम भद्राचार्य ने पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके साहित्यिक कार्यों को मान्यता मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए भारत को श्रेष्ठ बनाने और निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सभी को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री देवनानी आज जयपुर में पत्रकार सम्मान समारोह में बोल रहे थे। पत्रकार मनोज माथुर की स्मृति में ये अवार्ड समारोह रखा गया। प्रिंट श्रेणी में अवधेश आकोदिया, इलेक्ट्रॉनिक में महेश दाधीच और डिजिटल मीडिया श्रेणी में सौरभ भट्ट को सम्मानित किया गया। श्री देवनानी ने कहा कि पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने पत्रकारों से देशभक्ति की भावना जगाने और सकारात्मक वातावरण बनाने का आग्रह किया।
राष्ट्र श्रेष्ठ बने, आगे बढ़े, ये शायद हम सबकी मन की भाव होंगी और उस मन के भाव को हम प्रकटीकरण कैसे समाज में करें, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। अलग पत्रकार जगत के साथ 50 साल के बीच में हो गए मेरे को भी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज कोटा में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने गंभीरता से लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए। श्री बिरला ने स्थानीय मुद्दों पर क्षेत्रवासियों से संवाद भी किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद आवश्यक है और इससे कई समस्याओं का समाधान होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। माउंट आबू में कल से ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 3 दिन के इस उत्सव में राजस्थानी संस्कृति बहुरंगी परंपराओं के साथ कई रोचक प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान नक्की झील पर नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा।
सिरोही जिले में स्थित राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में कल 17 मई से ग्रीष्म महोत्सव शुरू होगा। यह महोत्सव 3 दिनों तक आयोजित किया जाएगा और इसका समापन 19 मई को होगा। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग व नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। महोत्सव को लेकर पर्यटकों व स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। देश भर से कलाकार यहां पहुंचकर अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। यहां पर बोटिंग रेस, मटका दौड़, रस्सी खेच सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक 5 सोलर प्लांट लगाए हैं। कुसुम योजना के तहत लगे इन संयंत्रों से 40,000 यूनिट बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। ये प्लांट जिले के साड़ास, जावदा, बांगेड़ा घाटा और इंदौरा में लगाए गए हैं। आने वाले समय में डिस्कॉम की ओर से जिले में 38 मेगावाट के 25 प्लांट और लगाए जाएंगे, जिससे बिजली उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया। हाल ही में संपन्न हुए इन खेलों में 24 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा। राजस्थान राज्य खेल परिषद के प्रबंधक रण विजय सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि राज्य के खिलाड़ियों ने पिछले साल तमिलनाडु में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि राजस्थान ने सबसे ज्यादा 14 पदक साइकिलिंग में हासिल किए हैं।
इस बार के यूथ गेम्स जो बिहार में आयोजित हुए थे उसके अंदर हमारे टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पूरे देश में राजस्थान का तीसरा स्थान आया है। ये मेडल्स आने के पीछे एक तो हमारा जो कोचिंग का जो सिस्टम है वो थोड़ा बेहतर हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब अच्छा हो रहा है हमारे यहाँ पे, यहाँ के जो बच्चे हैं वो कंटिन्यू राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं अभी लागू की हुई है जिसमें आउट ऑफ टर्न पॉलिसी है, 2% रिजर्वेशन है, जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है उनको कोई प्लॉट या जमीन है रियायती दर पे वो भी दी जा रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अनुदान दिया जा रहा है, कुछ ये भी कारण है जिससे हमारी परफॉर्मेंस लगातार बढ़ रही है।
और अब मौसम। प्रदेश में आज कई जिलों में लू का असर रहा, वहीं कुछ इलाकों में आज आंधी बारिश की संभावना है। इनमें भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, टोंक, दौसा, अलवर और भरतपुर शामिल हैं। हनुमानगढ़, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर सहित कई स्थानों पर आज भीषण गर्मी और हीट वेव के प्रकोप से लोग बेहाल रहे। वहीं श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह बांसवाड़ा और उदयपुर में कई स्थानों पर हल्की बरसात के समाचार हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के 10 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिले शामिल हैं। वहीं राज्य के पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी और लू का असर रहने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में 9 शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों में डेंगू बुखार के साथ साथ अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाना है। एक रिपोर्ट।
डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तेज बुखार, सरदर्द और कमजोरी इसके मुख्य लक्षण हैं। समय पर इलाज नहीं मिलने पर ये रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये संक्रमण शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को कम कर स्थिति को गंभीर बना देता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के इस साल की थीम देखें, साफ करें, ढकें, डेंगू को हराने के उपाय करें रखी गई है। राज्य में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां रखी गई हैं। इनमें पोस्टर, नारा लेखन और जागरूकता सामग्री वितरण शामिल हैं। कल विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाएगा। जैसलमेर में इस मौके पर 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
रणथंभौर बाघ परियोजना से एक बार फिर खुशखबरी मिली है। फलौदी रेंज में बाघिन T2302 के 3 नए शावक देखे जाने की पुष्टि हुई है। वन विभाग ने इसकी प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर दौरे का कार्यक्रम। देश भर के 100 से ज्यादा आधुनिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर दोबारा विचार करने को कहा। माउंट आबू में कल से ग्रीष्म महोत्सव की शुरुआत। और प्रदेश में मई महीने में भी मौसम का मिला जुला मिजाज, कई जगह आंधी बारिश, वहीं कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी का प्रकोप। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।